ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 25वां अध्याय, राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। मुख्या नाम पुरस्ताद द्वास्तयापण बहुदनो विषयो याति पुरराड रसज्ञा विपणान्वितः। द्वाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। पूर्व दिशा में स्थित पांचवें द्वार का नाम मुख्या अर्थात मुख्य था। इस द्वार से वह रसज्ञ तथा विषण नामक दो मित्रों के साथ बहुदन तथा आपण नामक दो स्थानों को जाता था। तात्पर्य, यहां पर मुख को मुख्य अर्थात सबसे महत्वपूर्ण द्वार बतलाया गया है। मुख इसलिए महत्वपूर्ण द्वार है क्योंकि इससे दो कार्य संपन्न होते हैं, पहला खाने का तथा दूसरा बोलने का। खाने का काम रसज्ञ अर्थात जीभ नामक मित्र के द्वारा संपन्न होता है क्योंकि जीभ विभिन्न प्रकार के भोजनों का स्वाद ले सकती है। जीभ से बोलने का भी काम लिया जाता है, चाहे भौतिक सुख की बात हो या वैदिक ज्ञान हो, लेकिन यहां पर भौतिक इंद्रिय सुख पर बल है, इसलिए रसज्ञ शब्द व्यवहृत हुआ है। अनुवाद को दोहराइएगा। पूर्व दिशा में स्थित पांचवें द्वार का नाम मुख्या अर्थात मुख्य था। इस द्वार से वह रसज्ञ तथा विषण नामक दो मित्रों के साथ बहुदन तथा आपण नामक दो स्थानों को जाता था। राजा पुरंजन जिस शहर में गए थे उस शहर का यहां पर वर्णन चल रहा है। इस शहर में राजा पुरंजन के भोग के लिए बहुत सारे सुविधाएं उपलब्ध थीं और इन सुविधाओं का भोग राजा पुरंजन नियमित तौर से किया करते थे। यहां पर इस शहर के 9 द्वारों का वर्णन है और हम देख चुके हैं कि पूर्व दिशा की ओर इस शहर के 5 द्वार हैं और उत्तर और दक्षिण में एक एक द्वार, और फिर पश्चिम की ओर एक दो द्वार हैं, तो कुल मिलाकर 9 द्वार हो गए। हम ये भी देख चुके हैं कि ये शहर जो है केवल हमारा शरीर है और राजा पुरंजन जीवात्मा है। तो ये कौन से 5 मुख हैं जो कि पूर्व दिशा की ओर देखते हैं? वह है हमारे 2 आंख, हमारे 2 नसिका और हमारा 1 मुंह, 5। तो इनको पूर्व दिशा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये आंखें सामने देखती हैं। सामने देखने का मतलब है सूर्य की ओर देखना, और सूरज पूर्व दिशा में होता है, उसका उदय। इसलिए ये द्वार, ये 5 द्वार जो हैं, ये पूर्व दिशा में खुलती हैं, ऐसा वर्णन हो रहा है। और इन 5 द्वारों में से पहले तो हम वर्णन आंखों के और नसकों के बारे में तो सुन ही चुके हैं, और आज के श्लोक में नारद मुनि राजा प्राचीन बहिष्यत को इस मुख नाम के द्वार का वर्णन कर रहे हैं। बता रहे हैं मुख्या नाम पुरस्ताद, और इस द्वार का नाम है मुख्या। मुख्या मतलब जो प्रमुख होता है, मुख्य। और ये मुख्य द्वार कौन सा है? मुख। नाम भी मुख है। क्यों नाम इसका मुख है? हम इसे मुख क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रमुख है, इंद्रियों में से प्रमुख। क्योंकि अपने मुख से हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, मुख से हम सब कुछ बिगाड़ सकते हैं, सब कुछ ठीक भी कर सकते हैं। एक शब्द को गलत बोल दिया तो कितना नुकसान हो सकता है, और वही मुख से अगर कृष्ण का नाम निकला तो कितना भला हो सकता है। तो मुख से दो प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे कि यहां बताया जाता है, रसज्ञ और विपण। जब राजा पुरंजन शहर के बाहर जाते थे तो इन दो मित्रों के साथ में वो जाया करते थे। उनका नाम था रसज्ञ और विपण, मतलब स्वाद लेने की, स्वाद लेने का जो भोग है और बोलने की जो प्रवृत्ति है, इन दोनों से। और फिर वो जाते थे दो स्थानों पर जिनका नाम था आपण और बहुदनव। तो इस प्रकार से जिह्वा, जो कि मुख के भीतर है, ये दो प्रकार से भोग कर सकता है। एक तो स्वादिष्ट व्यंजनों को चखकर, और दूसरा बार बार हिलते हुए नाना प्रकार के ध्वनि मुख से निकालकर, अर्थात बोलने की प्रवृत्ति। तो जहां तक स्वाद लेने की प्रवृत्ति है, ये तो बहुत प्रबल है। हम सब अच्छे अच्छे पदार्थ खाना पसंद करते हैं। हर दिन हमें अलग अलग तरह की चीजें चाहिए खाने के लिए, और वो भी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट। किसी चीज में नमक कम हो या किसी चीज में स्वाद ठीक से ठीक नहीं हो तो हमें अच्छा नहीं लगता। हमारी इच्छा हमेशा ये रहती है कि मीठी चीजें खाएं, बिल्कुल स्वादिष्ट चीजें खाएं, अच्छे नमकीन चीजें खाएं, और हमेशा जैसे हम चाहते हैं वैसे ही भोजन हो, जितनी मात्रा में हम खाना चाहते हैं उतना ही हो। तो जिह्वा हमें प्रेरित करता है नाना प्रकार के अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजनों को चखने के लिए। लेकिन जब जिह्वा वश में हमें हम नहीं कर सकते तो हमारी सारी इंद्रियां वश के बाहर चले जाते हैं। प्रभुपाद जी बताया करते हैं कि हमारा जिह्वा, हमारा पेट और जननेंद्रियां एक ही लाइन में है, और इनका संबंध है, बड़ा गहरा संबंध है। जब हम जिह्वा को वश में कर लेते हैं तो उदर अर्थात पेट और जननेंद्रियां खुद ब खुद वश में हो जाती हैं। लेकिन अगर जिह्वे को हमने वश में नहीं किया तो फिर उदर और जननेंद्रियों को वश में हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम जिह्वा को वश में करें। कैसे वश में कर सकते हैं? केवल कृष्ण प्रसाद पाकर। और कृष्ण प्रसाद भी बिल्कुल संयम से, ऐसा नहीं कि कृष्ण प्रसाद है इसलिए बिना संयम के हम इसे खाते रहे। कृष्ण प्रसाद में भी हमें विवेक करना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किस तरह का प्रसाद खाना चाहिए, क्योंकि इन सब का प्रभाव हमारे इंद्रियों पर, हमारे मन पर पड़ता है। और बाहर जाके होटल में खाना, रेस्टोरेंट में खाना, नाना प्रकार के इधर उधर की चीजें खाना, ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इनसे जिह्वा कभी भी वश में नहीं आ सकती है। और जिह्वा वश में नहीं आई तो मन को वश में करना फिर असंभव हो जाएगा, और जिसके लिए मन काबू में नहीं है वो भक्ति कैसे कर सकेगा? बहुत कठिन हो पाएगा। रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बहुत निकट के पार्षद थे, कृष्ण भगवान के बड़े शुद्ध भक्त थे, बड़े अमीर खानदान में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता और उनके जो चाचा थे वो दोनों बड़े जमींदार थे जगन्नाथपुरी के पास में, हिरण्य मजुमदार और हिरण्यमय मजुमदार, और बहुत धन था इनके पास। लेकिन फिर भी वैराग्य की अग्नि रघुनाथ दास के हृदय में प्रज्वलित रूप से जलती थी। वो उस दिन की अपेक्षा करते थे जबकि वो घर को त्याग कर चैतन्य महाप्रभु के संग में और उनके भक्तों के संग में जाकर कृष्ण कीर्तन और कृष्ण कथा करते रहे। यही उनकी एकमात्र लालसा होती थी। हालांकि सारे दुनिया भर के भोग सामग्री उनके लिए उपलब्ध थी, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी को इन चीजों में बिल्कुल रुचि नहीं थी। जन्म से ही उनके हृदय में ऐसे वैराग्य की भावना बड़े तीव्र रूप से थी। एक बार अंततः कई महीनों के बाद, बल्कि कई सालों के बाद, जब वो अपने घर से भाग गए और चैतन्य महाप्रभु के संग में आए, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको पुरी में स्वीकार किया, उनको आलिंगन किया, और ये देखकर सारे भक्त आश्चर्यचकित हो गए कि महाप्रभु ने कितनी असीम कृपा रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर की है। और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वयं अपना महाप्रसाद दिया। गोविंद, जो कि चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे, उन्होंने खुद महाप्रभु की थाली लेकर रघुनाथ दास गोस्वामी को खिलाया। बड़े आनंद से रघुनाथ दास गोस्वामी ने महाप्रभु के प्रसाद का सेवन किया। वैसे भी महाप्रभु केवल जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खाया करते थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी कितने भाग्यशाली थे कि जगन्नाथ का प्रसाद तो था ही, साथ साथ चैतन्य महाप्रभु ने उसका सेवन भी किया था, तो महाप्रसाद हो गया। इस प्रकार से 5 दिन लगातार रघुनाथ दास गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद का सेवन किया। लेकिन इस वक्त वो वैरागी बन चुके थे, घर को छोड़ चुके थे, ब्रह्मचारी जीवन में थे, तो उन्होंने सोचा कि अभी मुझे ये प्रसाद खाना उचित नहीं है क्योंकि मैं एक वैरागी हूं। तो उन्होंने महाप्रभु का महाप्रसाद खाना छोड़ दिया और फिर वो जाकर जगन्नाथ मंदिर के सामने जो सिंह द्वार है वहां पर खड़े हुआ करते थे और वहां पे भिक्षा स्वीकार करते थे। सर्वकाल के लिए जगन्नाथ मंदिर में ये एक प्रथा है कि जो भी भूखा है, जो भी दीन है, वो इस जगन्नाथ मंदिर के बाहर जो सिंह द्वार है वहां पर आके खड़ा हो सकता है। वहां पर कई दान के क्षेत्र हैं, वहां से वो कोई भोजन इत्यादि प्रसाद प्राप्त कर सकता है। अन्यथा रात के समय जो जगन्नाथ भगवान के सेवक होते हैं, अपनी अपनी सेवा करके जब अपने अपने घर में लौट कर जाते हैं तो द्वार से होकर जाते हैं, और अगर वो देखते हैं कि कोई वैष्णव यहां भिक्षा मांगने के लिए खड़ा है, तो फिर वो दुकानदारों से कोई व्यवस्था कर लेते हैं जिससे कि इस वैष्णव को पर्याप्त मात्रा में प्रसाद मिल जाए। तो कोई व्यक्ति जगन्नाथ मंदिर के सामने भूखा नहीं रहता। ये अनादि काल से प्रथा चलती आई है और अब भी ये प्रथा चल रही है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि मैं भी ऐसे ही करूंगा क्योंकि मैं अभी वैरागी हूं। तो उस समय रात के समय वो खड़े हुआ करते थे और फिर वहां पर ये सेवक आके उनको प्रसाद दिया करते थे। तो एक दिन ऐसे हुआ कि गोविंद ने चैतन्य महाप्रभु को बताया। जब महाप्रभु ने पूछा कि रघुनाथ दास गोस्वामी दिखाई नहीं दे रहे हैं, रघुनाथ दास कहां है, तो गोविंद ने कहा कि केवल 5 दिन उन्होंने आपका महाप्रसाद स्वीकार किया, 6ठे दिन से वो सिंह द्वार के सामने खड़े हैं और वहां जो भी जगन्नाथ जी के सेवक उनको भिक्षा देते हैं वो भिक्षा वो स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना तो वो बड़े सुखी हो गए, बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, जो रघुनाथ दास ने किया है वो उचित है। खास करके जब कोई वैरागी हो जाता है तो अगर अपने जिह्वा के लिए वो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन चखने की इच्छा रखेगा तो उसकी भक्ति, उसका आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। वैरागी को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम का उच्चारण करे और इस प्रकार से सिंह द्वार पे खड़े होकर फिर वो भिक्षा स्वीकार करे, बड़े आनंद से स्वतंत्रता से जगन्नाथ जी का दिन भर दर्शन किया करे और ऐसे सुखी जीवन बिताए और मृत्यु के बाद भगवान के धाम को प्राप्त हो जाए। अगर वैरागी भोग के जीवन में उतर आएगा तो उसकी भक्ति अवश्य नष्ट हो जाएगी। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, महाप्रभुर भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, यहां देखी प्रीत हन गौर भगवान। कविराज गोस्वामी बताते हैं कि महाप्रभु के भक्तों के चरित्र में वैराग्य ये प्रधान गुण दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो कभी भी भोग में इच्छा नहीं प्रकट करते थे। हमेशा सारे महाप्रभु के भक्तगण बड़ा सरल जीवन बिताए करते थे, इंद्र तृप्ति में विषय भोग में बिल्कुल नहीं लगा करते थे, इसलिए ये उनका प्रधान गुण है। और जब महाप्रभु ऐसा वैराग्य देखते थे तो बड़े प्रसन्न हो जाते थे, यहां देखी प्रीति होना गौर भगवान। तो ये देखकर बड़ी प्रीति भावना, प्रेम की भावना, प्रसन्नता की भावना महाप्रभु के हृदय में जागृत हो जाती थी। तो महाप्रभु गोविंद को बोल रहे थे कि ऐसा अगर कोई करेगा वैरागी, तो वो अपने भक्ति के जीवन में प्रगति कर पाएगा, लेकिन जो ऐसा नहीं करेगा वो कृष्ण को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। जिह्वार लालसाय जे इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। वो कहने लगे कि जिह्वार लालसाय, कि जिह्वा के लालसा में, अर्थात स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन चखने के लालसा में, इति उति धाय, अगर कोई इधर उधर भागता है, मतलब बहुत प्रयत्न करता है, ये महाप्रसाद मीठा खीर कहाँ मिलेगा, वो गुलाब जामुन कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, वो महा कहाँ मिलेगा, दिन भर स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए बड़ा आतुर है, इधर उधर भागता है, इति उति धाय, तो क्या होता है, शिष्णोदर परायण, शिष्ण मतलब जनेन्द्रिया, उदर मतलब हमारा पेट, तो कृष्ण परायण होने के बजाय वो शिष्णोदर परायण हो जाता है, अपने इंद्रियों का दास हो जाता है, गोस्वामी होने के बजाय गोदास हो जाता है, इसलिए कृष्ण नहीं पाए। तो महाप्रभु ने बता दिया कि जो व्यक्ति केवल जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए इधर उधर भागेगा वो कभी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो शिष्णोदर परायण हो जाएगा, वासुदेव परायण या कृष्ण परायण कभी नहीं होगा। इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी के वैराग्य को देखकर महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा ही मेरे सारे भक्तों को होना चाहिए। इस प्रकार से हमारे जीवन में भी हमने अगर सरल जीवन बिताया तो हम कृष्ण को प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने आदेश भी दिया था, भाल न खाई बे भाल न पोड़ी बे सदा राधा कृष्ण भजी बे, कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा मत रखो और अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन खाने की इच्छा मत रखो, सरल जीवन जियो और सदा राधा कृष्ण का भजन करो। ये भक्त का जीवन होना चाहिए, सरल जीवन ऊंचे विचार, तो इस प्रकार से हम भक्ति अच्छी तरह से कर पाएंगे। जिह्वा का दूसरा काम होता है बोलना, पक 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 पक, हमेशा ये इच्छा रहती है, प्रवृत्ति बहुत तीव्र रहती है, असहनीय वेग रहता है ये बोलने के लिए, ये वेग बहुत प्रबल होता है। इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वाम अपिमाम यो पृथ्वीम सशिष्यात्। कि ये जो वाचो वेगम, जो जिह्वा का वेग है, उसके साथ साथ में मन का वेग, क्रोध का वेग, जनेन्द्रियों का वेग, उदर का वेग, ये सारे षड वेग जो हैं बहुत तीव्र हैं, प्रबल हैं। एतान वेगान यो विषहेत, विषहेत मतलब जो सहन कर सकता है इन वेगों को, वो कौन हो जाता है, धीर, धीर हो जाता है। और फिर सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम सशिष्यात, सारे पृथ्वी भर में शिष्य करने के लिए वो व्यक्ति योग्य हो जाता है, क्योंकि उसने अपने इंद्रियों के वेग को वश में कर लिया है। तो वाच वेग में जो बोलने की प्रवृत्ति इतनी प्रबल है कि दिन भर हमें बोलने की प्रेरणा देती है। अगर हम कृष्ण कथा नहीं बोलें तो दिन भर हम संसार का बकबक करते रहेंगे। कई वैरागी ऐसे होते हैं जो कि मौन व्रत का पालन करते हैं। मौन व्रत तो बकबक करने से अच्छा है, कोई संसारी बातें करने से मौन ही अच्छा है, लेकिन मौन से भी श्रेष्ठ है कृष्ण कथा करना। तो हमें देखना चाहिए कि भक्तों के संग में, मंदिर में हो या अपने घर में हो या कहीं भी हो, अगर हम कृष्ण कथा नहीं बोल रहे हैं तो कम से कम मौन व्रत धारण करना चाहिए। और किसी भी परिस्थिति में भौतिक कथा तो नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम श्री कृष्ण के बारे में हमेशा बोलते रहें। इस प्रकार से ये जिह्वे को हम वश में कर सकते हैं। प्रभुपाद जी उपदेश अमृत में बताते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण कथा नहीं करते हैं, केवल भौतिक कथा करते हैं, वो मेंढक की तरह होते हैं। मेंढक क्या करता है, दिन भर आवाज करते रहता है। और जो ऐसे भौतिकवादी लोग होते हैं, मायावादी लोग होते हैं, वो केवल ऐसे दिन भर मेंढक की तरह आवाज करते रहते हैं। भले वो कितने विद्वान क्यों न माने जाए, भले नोबेल पुरस्कारों में क्यों न मिले, बड़े बड़े वैज्ञानिक क्यों न हो या बड़े बड़े दार्शनिक कवि क्यों न हो, अगर वो कृष्ण के बारे में नहीं बोल रहे हैं तो वो केवल उस मेंढक की तरह है जो दिन भर केवल आवाज करते रहता है। मेंढक की आवाज से मेंढक को क्या फायदा मिलता है, फायदा कुछ नहीं मिलता, उल्टा केवल सांप को वो आकर्षित करता है, सांप आकर उस मेंढक को खा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो लोग कृष्ण की कथा नहीं करते हैं बल्कि दिन भर केवल भौतिक कथा करते रहते हैं, वो केवल सांप रूपी, मृत्यु रूपी सांप को निमंत्रण दे रहे हैं और मृत्यु आकर उनको खा जाती है। उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता, कोई मूल्य नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया जाता है, आयुर हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तंच यन असौ तस्यर्ते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। जो लोग भगवान की कथा नहीं करते हैं उनके लिए जैसे जैसे हर दिन सूर्योदय होता है और दिन के अंत में जब सूर्यास्त हो जाता है तो उनकी आयु का हरण हो जाता है, वो मृत्यु के एक दिन करीब और पहुंचते हैं। आयुर हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम चयन असो, उद्यन मतलब उदय होता है, अस्तम मतलब अस्त हो जाता है सूर्य। तो हर एक दिन सूर्योदय और सूर्यास्त होने से भौतिकवादी लोगों के आयु का हरण हो जाता है। लेकिन तस्यर्थ यत् क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया, लेकिन जो उत्तम श्लोक की वार्ता करते रहते हैं, कृष्ण भगवान का और एक नाम है उत्तम श्लोक, जिसका मतलब है जिनका गुणगान सुंदर कविता से, उत्तम श्लोकों से होता है। तो जो लोग अपना सारा समय उत्तम श्लोक वार्तया कृष्ण कथा में बिताते हैं तो उनके लिए सूर्योदय और सूर्यास्त अर्थात समय का बीतना ये कोई खतरे की बात नहीं है, क्योंकि कृष्ण भक्त मृत्यु की ओर नहीं जाते हैं, वो शाश्वत जीवन मुक्ति की ओर जाते हैं। हर सूर्यास्त भक्तों के लिए मुक्ति के द्वार के करीब और ले जाता है, शाश्वत जीवन का द्वार है सूर्यास्त। लेकिन सूर्यास्त हर दिन का अभक्तों के लिए वो केवल मृत्यु का द्वार है। इस प्रकार से अगर हम दिन भर केवल कृष्ण कथा करते रहें तो हमारा जिह्वा वश में आ सकता है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी और रूप गोस्वामी जी भी समझाते हैं कि हमारा जिह्वा वश में आ सकेगा केवल अगर हम कृष्ण प्रसाद का सेवन करें और हम कृष्ण कथा बोलें। आज श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है, तो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख भक्तों में से 6 गोस्वामी थे, षड गोस्वामी वृंदावन के। इन सबको महाप्रभु ने स्वयं आदेश दिया कि आप सब वृंदावन में जाना, वृंदावन में जाके आप भजन करना, वहां राधा कृष्ण की लीला का वर्णन करना, ग्रंथ लिखना, जो शास्त्रों में ज्ञान है उसका सार लेके समाज के कल्याण के लिए प्रस्तुत करना, मंदिरों की स्थापना करना। और ये आदेश इन 6 गोस्वामियों ने पालन किया। और ये 6 गोस्वामी कौन थे? वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। इस प्रकार से इन 6 गोस्वामियों में से गोपाल भट्ट गोस्वामी एक थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी का इतिहास इस प्रकार से है। चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो वो दक्षिण भारत की यात्रा करने के लिए गए, सारे तीर्थ स्थानों में जा रहे थे। तो सन 1513 में जब वो श्री रंगम क्षेत्र में पहुंचे, जहां की रामानुज संप्रदाय के बहुत सारे भक्त रहते हैं और जहां की रंगनाथ भगवान विराजे हैं, बहुत विशाल विष्णु जी की मूर्ति है और वहां बहुत शुद्ध वैष्णव रहा करते हैं, तो महाप्रभु जब वहां पहुंचे तो वो कीर्तन कर रहे थे भगवान का विग्रह देखकर। और वो कीर्तन सुनकर और महाप्रभु का नृत्य देखकर वहां के एक ब्राह्मण पुरोहित बड़े प्रभावित हुए, उनका नाम था वेंकट भट्ट। वेंकट भट्ट भी उनके साथ में कीर्तन करने लगे और नृत्य करने लगे। फिर महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया और वेंकट भट्ट ने उनको अपने घर में निमंत्रण किया। चातुर्मास का समय था तो वेंकट भट्ट ने कहा कि वैसे भी चातुर्मास के समय साधु यहां वहां जाते नहीं हैं, तो आप मेरे घर में क्यों नहीं निवास करते? वैसे भी ये तीर्थ स्थान है, श्रीरंगम है, तो यहां रहिएगा और हमें संग दीजिए। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है। तो वहां पर महाप्रभु जो कि स्वयं श्री कृष्ण है वेंकट भट्ट के घर में रहे। वहां पर वेंकट भट्ट के साथ कई सुंदर सुंदर चर्चाएं हुई, संवाद हुए, जिनका वर्णन चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं। बहुत गूढ़ कृष्ण तत्व, भक्ति के तत्व के बारे में संवाद दोनों के बीच में हुए। अभी दोनों वेंकट भट्ट और उनकी पत्नी बड़े अच्छे वैष्णव थे, शुद्ध वैष्णव थे, लेकिन वो रामानुज संप्रदाय के थे, वृंदावन के कृष्ण को अच्छी तरह से नहीं जानते थे, विष्णु को अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वृंदावन के कृष्ण को भी वो अच्छी तरह से जान गए। वेंकट भट्ट के एक छोटा लड़का था जिनका नाम था गोपाल भट्ट। और गोपाल भट्ट बहुत भाग्यशाली थे क्योंकि उस उम्र से ही उनको चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त हुआ। उस समय गोपाल भट्ट बहुत छोटे थे इसलिए ज्यादा तो कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन जहां भी चैतन्य महाप्रभु जाते थे वो महाप्रभु के संग में जाया करते थे। महाप्रभु जब घर में रहते थे और जो भी प्रवचन देते थे, जो भी कृष्ण कथा करते थे, वो गोपाल सुनते थे और फिर गोपाल भट्ट उनकी सेवा करते थे और महाप्रभु के उच्चिष्ट का सेवन करते थे, महाप्रसाद का सेवन करते थे। इस प्रकार से महाप्रभु की बड़ी कृपा उनको मिल गई और महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि तुम्हारे माता पिता बहुत अच्छे भक्त हैं, इसलिए उनकी सेवा करना और उनके देहांत के बाद तुम वृंदावन चले जाना, जहां पर मेरे अन्य शिष्य रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी हैं और वो तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे, और उनके साथ में वृंदावन में रहकर तुम वहां प्रचार करना और ग्रंथों की रचना करना। तो गोपाल भट्ट ने ये आज्ञा अपने हृदय में स्वीकार कर ली। वेंकट भट्ट के दो और भाई थे, एक का नाम था तिरुमल भट्ट और दूसरे का नाम था प्रबोधानंद। आगे चलकर यही प्रबोधानंद जो हैं, जो कि पहले गृहस्थी जीवन में थे, बहुत शुद्ध श्री वैष्णव संप्रदाय के वैष्णव भक्त थे, उन्होंने संन्यास लिया। महाप्रभु की कृपा उनको प्राप्त हुई और वो भी महाप्रभु के एक निकट पार्षद बन गए। इस प्रकार से प्रबोधानंद सरस्वती गौड़ी वैष्णव सिद्धांत को का प्रचार करने लगे और वो आगे चलकर गोपाल भट्ट के गुरु बने। गोपाल भट्ट ने दीक्षा प्रबोधानंद सरस्वती से ली और इतना ही नहीं, उन्होंने उनसे त्रिदंडी संन्यास भी लिया। इस प्रकार से प्रबोधानंद सरस्वती के आश्रय में गोपाल भट्ट गोस्वामी बने और भक्ति में आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अच्छी तरह से शास्त्रों का अध्ययन किया, प्रबोधानंद सरस्वती के निर्देशन में बहुत बड़े विद्वान बने, अच्छी संस्कृत जानते थे, कविता जानते थे, दर्शन शास्त्र में निपुण हुए, भक्ति तत्व को अच्छी तरह से जान गए। इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े विद्वान हुए और वैष्णव सिद्धांत का प्रचार सब जगह करने लगे। कई साल तक उनके माता पिता की सेवा वो करने लगे और जब उनके माता पिता का देहांत हो गया तो वो श्रीरंगम छोड़कर वो वृंदावन चले गए। वृंदावन जब गए तो वहां पर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही उनको बता दिया था कि गोपाल भट्ट नामक मेरा भक्त आने वाला है, तो कृपा करके उसे शरण दे और आपकी कृपा दे और आपके संग में ही रखिए ताकि वो आप सब मिलकर प्रचार कर सके। इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी जब वृंदावन पहुंचे तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि इन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनका स्वागत किया और फिर वो छह गोस्वामियों के संग में वहां पर वृंदावन में रहे। आप जानते हैं कि हरि भक्ति विलास ये भक्तों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी रचना सनातन गोस्वामी पाद ने की थी, जिसमें कि हमारी अर्चना पद्धति के लिए, बल्कि हमारे रहन सहन के लिए सारे विस्तार में मार्गदर्शन दिया हुआ है। कैसे हमें पूजा करना चाहिए, कैसे भोग चढ़ाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, पीना चाहिए, बोलना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, कैसे पहनने चाहिए, सारे विस्तार में छोटी 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 बातें जो वैष्णव के लिए साधारण जीवन में, दैनिक जीवन में आवश्यक हैं, उनके भक्ति के लिए सारी मर्यादा, सारी आचार संहिता समझ लीजिए, ये हरिभक्ति विलास में है। तो हालांकि इसका श्रेय सनातन गोस्वामी को जाता है, लेकिन वास्तव में सारे अलग अलग ग्रंथों से संशोधन करके काफी कुछ जो विषय हैं वो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने निकाले और ये हरिभक्ति विलास का संपादन भी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने की। और जब सनातन गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास ग्रंथ की रचना की, उसके बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इसी ग्रंथ का एक संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया और इसके साथ में दिग्दर्शनी टीका भी साथ में जोड़ दी। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों को साथ में हरिभक्ति विलास की रचना करने का श्रेय दिया जाता है। यह हरिभक्ति विलास खास करके गौड़ीय वैष्णव भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हम अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, ये अर्चना पद्धति हरिभक्ति विलास के ऊपर आधारित है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने हरिभक्ति विलास से संक्षिप्त जो नियम है उनको लेकर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अर्चना पद्धति। और फिर गौड़ीय मठों में और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो भी अनुयायी हैं वो इस अर्चना पद्धति के अनुसार वो सेवा करते हैं अर्चा विग्रह की। और फिर प्रभुपाद जी ने इस अर्चना पद्धति को भी और भी सरल बनाया, ताकि इस्कॉन के मंदिरों में ये पद्धति इस्तेमाल की जाए, और यहां श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में उस पद्धति को भी और भी सरल बनाया गया है, ताकि हम यहां पर आसानी से अच्छी तरह से राधा गोकुलानंद की सेवा कर सकें। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने और कई ग्रंथों की रचना भी की, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी अगर याद किए जाते हैं तो कई चीजों के लिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिस चीज के लिए वो याद किए जाते हैं कि उन्होंने राधा रमण मंदिर की स्थापना की वृंदावन में। वृंदावन में 500 से कम मंदिर नहीं है, मंदिरों की नगरी है वृंदावन, क्योंकि वो कृष्ण की नगरी है। और इन 500 मंदिरों में से 7 मंदिर बड़े प्रमुख माने जाते हैं। सबसे पहले है राधा मदन मोहन, इसकी स्थापना किसने की? सनातन गोस्वामी पाद ने। फिर दूसरा है राधा गोविंद देव मंदिर, इसकी स्थापना किसने की? रूप गोस्वामी ने। और फिर है राधा गोपीनाथ मंदिर, इसकी स्थापना किसने की? रघुनाथ दास गोस्वामी और मधु पंडित दोनों ने। और फिर चौथा है राधा दामोदर, राधा दामोदर मंदिर की स्थापना किसने की? जीव गोस्वामी ने। और उसके बाद में राधा श्याम सुंदर की स्थापना किसने की? श्यामानंद पंडित, श्यामानंद गोस्वामी ने की। और इसके बाद में है राधा रमण, राधा रमण की स्थापना किसने की? गोपाल भट्ट गोस्वामी ने। और एक है, और वो है राधा गोकुलानंद, वृंदावन के राधा गोकुलानंद, इसकी स्थापना किसने की? लोकनाथ गोस्वामी ने की। इस प्रकार से ये 7 प्रमुख मंदिर हैं वृंदावन के। तो इन 7 प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर है राधा रमण मंदिर, जिसकी स्थापना गोपाल भट्ट गोस्वामी ने की। तो इसका इतिहास भी बड़ा अच्छा है, सुंदर है। ऐसा हुआ कि एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी नेपाल गए थे। नेपाल में कई तीर्थ स्थान है, हिमालय है, वहां गंडकी नदी भी है। गंडकी नदी में शालग्राम शिला मिलते हैं। शालग्राम शिला जिनकी पूजा अर्चा सारे वैष्णव करते हैं, वो सारे जग भर में एक ही स्थान से मिलते हैं। जैसे गोवर्धन शिला केवल गोवर्धन पर्वत से मिलते हैं, उसी तरह से शालग्राम शिला जो कि विष्णु का रूप है, वो केवल नेपाल में गंडकी नदी में मिलते हैं, बस और कहीं नहीं। और इनके ऊपर भी कई तरह के चिन्ह होते हैं, तो अलग अलग तरह के शालिग्राम शिला होते हैं, जनार्दन शालिग्राम शिला, लक्ष्मी नरसिंह शालिग्राम शिला इत्यादि इत्यादि, कई प्रकार के चिन्हों से, अलग अलग चिन्हों से ये अलग अलग शालिग्राम शिला कहलाते हैं। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी वहां गंडकी नदी में गए, तो पानी निकालने के लिए अपना कमंडलू उन्होंने अंदर पानी में डाला, और जब कमंडलू बाहर निकाला तो उन्होंने देखा कि इनमें कई शालिग्राम शिलाएं हैं। जब उन शालिग्राम शिलाओं को देखा तो बड़े आश्चर्य हो गया उनको, गिना तो ठीक 12 थे। और ये 12 शालिग्राम उन्होंने देखे तो सोचा गलती से आ गए, तो फिर से उन्होंने शालिग्राम शिलाएं जल में डाल दिए, कमंडलू खाली किया, फिर से जल को ऐसे वैसे किया, फिर से कमंडलू पानी में डाला, और फिर से 12 के 12 शालिग्राम शिला ही उनके कमंडलों में आ गए। तो दूसरी बार भी जब ऐसा हुआ तो फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी समझ लिया कि यह भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है कि मुझे इन शालिग्रामों की पूजा करनी चाहिए। फिर अपने साथ में ये शालिग्राम शिला वो ले लिए, एक कपड़े के थैली में लगा दिया, जैसे हम जपमाला थैली में रखते हैं, फिर अपने गले में वो थैली लटका ली, और फिर उनकी पूजा करते रहे। और फिर जब वापस लौट कर आए वृंदावन, तो ये 12 शालिग्राम शिलाओं की पूजा करने लगे। और ऐसा बताया जाता है कि 1542 में जब नरसिंह चतुर्दशी का दिवस था, तो उस समय अचानक एक चमत्कार हुआ। इस चमत्कार के पीछे इतिहास ये है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रार्थना कर रहे थे कि वैसे मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, और आप शालिग्राम रूप में हैं, और अन्य जो मंदिर है, इतने सुंदर सुंदर कृष्ण के रूप हैं, वो आपका श्रृंगार स्वीकार कर रहे हैं, वो आपके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र बनाते हैं, गहने बनाते हैं, फूल माला की सेवा कर सकते हैं, लेकिन आप तो मेरे सामने केवल शालग्राम शिला के रूप में हैं। तो कृष्ण भगवान ने उनकी इच्छा जान ली। और फिर अचानक एक दिन क्या देखा गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कि उन 12 शालिग्रामों में से एक शालिग्राम ने अचानक कृष्ण का रूप धारण किया है। और फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े आश्चर्यचकित हुए, खुश हुए, सारे गोस्वामियों को निमंत्रण दिया और दिखाया, और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पे आए, वो भी बड़े खुश हुए और कहा कि बड़ा उत्सव करना चाहिए खुशी में। फिर ये विग्रह का नाम रखा गया राधा रमण, राधा को, राधा रानी को आनंद देने वाले। तो इस प्रकार से राधा रमण मंदिर की स्थापना हुई। और राधा रमण मूर्ति का इतिहास बड़ा लंबा है, और भी कई सुंदर लीला है राधा रमण मंदिर की, आज इनका वर्णन नहीं कर सकते। तो खैर, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इस तरह से अपना समय राधा रमण मंदिर में ही बिताया, और उनकी समाधि भी वहीं पर उसी मंदिर में है। 1585 में उनका तिरुभाव हुआ, आज उनको उनकी तिरुभाव तिथि है, और इसलिए आज इस दिवस पर हमें उनकी कृपा याचना करनी चाहिए कि उनके हृदय में जो कृष्ण प्रेम है उसका एक बूंद भी अगर हमारे हृदय में आ जाए तो हमारा जीवन धन्य होगा। वास्तव में गोपाल भट्ट गोस्वामी अनंग मंजरी नाम के सखी हैं गोलोक वृंदावन में। आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा गोलोक में श्रीमती राधा रानी करती हैं। श्रीमती राधा रानी के सेविकाएं हैं जो अष्ट सखी हैं, ललिता, विशाखा आदि। लेकिन इन सखियों के भी जो सेवक होते हैं, सेविकाएं होती हैं, उनको मंजरी कहते हैं। और ये मंजरियां जो होते हैं हमेशा कम उम्र के होते हैं, छोटे छोटे लड़कियां होती हैं, कुमारी होती हैं। और इनमें से प्रमुख में से एक है अनंग मंजरी। तो ये अनंग मंजरी के अवतार हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी। इसे 6 गोस्वामी जो भी महाप्रभु के निकट पार्षद थे, इनका कोई न कोई रूप गोलोक वृंदावन में था, और ये 6 गोस्वामी अलग अलग मंजरियों के स्वरूप हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी अनंग मंजरी के स्वरूप हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी 6 गोस्वामी में से एक हैं, और हमारे लिए इनकी कृपा याचना आज के दिवस पर करना बहुत आवश्यक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। ठीक है।